मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
तो मैं ये कर रहा था, डॉक्टर इस हवाले से देखेगा कि यार ये है और खाना एक्चुअली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह। इस्लाम हमें कुछ और ही दुनिया में लेके जा रहा है। इस्लाम कहता है जब खाना सामने आए ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला, अल्लाह को याद करो जिसने तुम्हें ये दिया। ये ठीक है, ये बात की तहकीक है, शुगर ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तुम ये अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तुम्हारी सेहत इससे अच्छी होगी खराब होगी, ये ठीक है, ये अगले मरहले में। पहले क्या, किसका नाम लेना है? उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम। इस रोटी को देखकर डॉक्टर को बाद में याद करो, अल्लाह को पहले याद करो। ये कितने प्रोसेस से गुजर के आई है तुम्हारे सामने चंगेरी में, जो दस्तरखान पे जो रखी हुई है। तुम्हारे रब ने आसमान से बारिशें बरसाई, फिर जमीन के सीने को फाड़ा उसने, फिर उससे नबातात पैदा किए, फिर उससे जानवरों के लिए चारा पैदा किया उसने। वो कोई गोश्त रखा होता है हमारे सामने, कहीं ऑयल रखा हुआ है, कहीं देसी घी रखा हुआ है, कहीं मक्खन रखा हुआ है। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, कुरान कहता है तुम्हारे दम में नहीं है कि तुम इन दरख्तों को अपने हाथों से पैदा करते। सारे के सारे काम मैंने किए। अगर मैं आसमान से बारिश रोक लूं और जमीन के सीने को फाड़ कर तनावर दरख्त पैदा करना छोड़ दूं तो तुम्हारे डॉक्टरों की कोलेस्ट्रॉल ऊपर ये नीचे की तहकीक जो है ना, ये अपने साथ कब्र में लेके दफन हो जाएंगे। ये सब के सब जीरो पे आ जाएंगे, जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। ये सारी तहकीकात की ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी, जो आज बड़े फंटर बने फिर रहे हो कि नई रिसर्च आई है वहां से, उस रिसर्च में गोरों की ये रिसर्च है, केला खाने से आपका कार्ब इतना ऊपर जाएगा और आपको पता नहीं पोटाशियम मिलेगा कि मैग्नीशियम मिलेगा। जो खुदा केले पैदा कर रहा है ना, पहले किसका हक है उसके बारे में रिसर्च करो। केले पे रिपोर्टें बाद में पढ़ो बैठ के। बादाम खाने से, इतने बादाम सुबह निहार मुंह खाने चाहिए, इतने नहीं खाने चाहिए, फिर बादाम कैसे खाने चाहिए, छील के खाएं या बगैर छीले खाएं, ठीक है भाई। सबसे पहले तो जिस खुदा ने ये बादाम को पैदा, इसमें तेल कितना निकलता है जब आप रगड़ो इसको, जमीन को खोद के देखो तो तेल बताओ, तेल निकालना आसान है जमीन से? अमेरिका की कंपनी आती है तेल निकालने के लिए, हजारों हजारों फुट खोदती है जाके, बड़े बड़े साए, फिर जाके तेल निकलता है। वरना जमीन में जब आप खोदो तो गोबर पानी मिट्टी, तेल आपको जमीन में नजर नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं युम्बितु लकुम बिज़रअ वज़ज़ैतून, तुम्हारा रब इसी गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से खेतियां भी पैदा करता है, जैतून का तेल भी पैदा करता है, और सिबगिल लिल आकिलीन, और बहुत सारे ऐसे ऑयल पैदा करता है जो खाने वालों के लिए सालन का काम देते हैं। सारे इसी जमीन से पैदा हो रहे हैं बहुत थोड़े अरसे में, चीजों को माहियतों को चेंज करता है अल्लाह ताला। मिट्टी गोबर और पानी के मिलाप से क्या क्या नई नई किस्म की चीजें पैदा हो रही हैं, और रगड़ने से कैसा तेल निकलता है उनके अंदर से, कहां से आ रहा है भाई ये? तो उस खुदा का भी हक है कि उससे उसको पूछा जाए। तो आपको पैगंबर जो है ना, जो अल्लाह के सफीर हैं, उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो ये बताएं कि ये लो कार्ब डाइट खाओ या फुल कार्ब डाइट खाओ। उनकी जिम्मेदारी है जो भी खाओ पहले क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, छोटा मेहरबान नहीं है, बड़ा का मतलब सबको खिला रहा है, और रहीम बहुत ज्यादा मेहरबान, खिला भी बहुत रहा है वो। रहमान और रहीम का फर्क पता है ना क्या है? रहमान सब पे रहमत, सारी मखलूक को दे रहा है वो, और रहीम का मतलब दे भी थोड़ा नहीं रहा, बहुत ज्यादा दे रहा है, इतना कर्म कर रहा है हमारे ऊपर। आज डॉक्टरों की जिंदगी से खुदा निकल गया, और फिर खाने के बाद क्या है, खाने के बाद फिर फौरन डॉक्टर क्या कहते हैं, अब जरा चेक करो कि कितनी शुगर पहुंची है इसकी, वही वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अल्लाह मियां ने क्या कहा, खाना खाने के बाद क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अतअमना, जिसने हमें खिलाया, अगर वो ना खिलाता तो हम, कोई डॉक्टर ना खुद खा सकता था ना खिला सकता। जितनी ये सारे रिज़्क़ भी अल्लाह ने पैदा किया, और जो आज हम खाना खा के चबा रहे हैं ना, ये दांत भी किसने पैदा किए? आप जो डेंटिस्ट है ना, वो आपको बताएगा कि इन दांतों की एज लंबी कैसे हो सकती है, ये गिरने से आप कैसे बचा सकते हैं, इनको कैसे साफ किया जा सकता है, और इनमें कैल्शियम की कमी कैसे पूरी की जा सकती है, सारी रिपोर्टें पेश करेगा। उन सब रिपोर्टों में सब घुस घुस के ना यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं यार दांतों के बारे में। लेकिन हमारा रब बता रहा है कि ये जो तुमने निवाला खा के चबाया है ना, ये दांत पहले से किसने फिट करके भेजा है यहाँ पे, ये निजाम किसने बनाया? तो अल्लाह ने बनाया है। तो जिस अल्लाह ने बनाया है उसको भूल गए, और डेंटिस्ट को आपने याद रखा हुआ है कि डेंटिस्ट की क्या मशवरे हैं कि जी खाना खाने से पहले खिलाल करना है या खाना खाने के बात खिलाल करने, दांत खाना खाने से पहले साफ करने या खाना खाने के बाद साफ करने, समझते हो कि नहीं समझते? लिबरल तबका इन चीजों में बहुत फंटर होगा, और मौलवियों के पास आमतौर पर इन चीजों की नॉलेज नहीं होती, वो बेचारा अपने दांत खराब होंगे तो डॉक्टर के पास जाएगा। अच्छा, मैं तो जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ उसके मुझे अपने दांत अपने से ज्यादा उसके खराब लग रहे होते हैं, लीला माशाल्लाह चंद डॉक्टरों के जो मेरा बयान सुन रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो हमें इनसे पूछना है कि माजरत कैसे कुछ हैं। तो ये सब चीजें कुछ कुदरती भी होती हैं, कुछ डॉक्टर पे इतना मदार नहीं होता इन चीजों का। तो अब क्या मसला है कि भाई अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं, जब तुमने खाना खाया तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। भूख किसने लगाई है? अल्लाह ने लगाई ना, वो सारा सिस्टम भूख लगाने का जो लगाया हुआ है वो किसने बनाया है? अल्लाह ने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अतअमना जिसने हमें खिलाया, वसकाना जिसने हमें पिलाया। और सबसे मज़ेदार अगला जुमला है, खिलाता तो काफिरों को भी है, पिलाता तो काफिरों को भी है, वो खाते हैं डकार मार के निकल जाते हैं, खुदा को याद नहीं करते। वजअलना मुस्लिमीन, हमें मुस्लिम बनाया कि खाना खाने के बाद हमें उसके शुक्र की तौफीक मिल रही है। काफिर को अल्लाह के शुक्र की तौफीक नहीं मिलती, वो खाता है एक हाथ में बर्गर एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक, खाएगा पिएगा, और उसको जब कहा जाए कि खुदा है खिलाने वाला तो वो इस बहस में उलझना ही नहीं चाहता। कहता भाई अपना रास्ता लो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है। आप बताएंगे जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्टमक का स्पेशलिस्ट हूँ, तो अच्छा आप मुझे बताओ कि जो मैंने बर्गर खाया और कोल्ड ड्रिंक पी तो ये मेरे पेट को नुकसान तो नहीं देगी? आप सर स्टमक के स्पेशलिस्ट हैं ना आप। अगर आप बताएंगे भाई मैं तुम्हें खुदा का हुक्म बता रहा हूँ कि ये खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो तो इससे अल्लाह तुमसे राज़ी होगा, तो कहें अल्लाह क्या होता है यार, अल्लाह राज़ी होने से क्या पैसे मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा अल्लाह राजी होने से? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो दुनिया में दो ही तबके हैं भाई, एक वो जिसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है, और एक वो है जो अल्लाह को याद रखते हैं, पानी पीने से पहले याद रखते हैं, पानी पीने के बाद याद रखते हैं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, हालांकि हजरत को मेडिकल साइंस का भी बहुत इल्म था, सेहत के हवाले से बहुत नॉलेज रखते थे, हजरत फरमाया करते थे कि जब मुझे भूख लगना शुरू होती है ना तो मैं उस वक्त से अल्लाह की नेमत को सोचना शुरू कर देता हूँ कि मेरे रब का मुझ पर कितना बड़ा एहसान कि वो मुझे भूख लगा रहा है। बहुत से लोगों को भूख नहीं लगती, भूख लगना भी तो नेमत है ना। फरमाया फिर मैं ये सोचता हूँ कि भूख लगने की वजह से जो खाने की तलब हुई, ये तलब भी एक लजीज चीज़ है। जब तलब पैदा होती है और उम्मीद हो के मिल जाएगा, ये पहले ज़माने में जब दूल्हा की शादी होने वाली होती थी ना तो शादी से पहले बहुत खुश होता था वो, वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि ज़िंदगी में कभी उसने किसी लड़की को देखा नहीं होता था तो उससे दिन गुजारना मुश्किल होता। अब ऐसा होता है कि बहुत से आप लोगों के अलावा अब वो है कि शादी होने वाली है, ठीक है हो जाएगी। पहले ऐसे ही हम सलाम दुआ थी, अब थोड़ा सा एक रिवायती अंदाज में हमारी क्या हो जाएगी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ मैं। वो है ना, दूल्हा गया बीवी दुल्हन के पास तो पहली रात कहते हैं मेरी कल आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ मैं, आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो जब इंसान को कोई नेमत मिलने वाली होती है, तलब होती है, तो उस तलब का जिसमें आपको पता हो कि मेरी तलब पूरी हो जाएगी, मेरी चाहत पूरी हो जाएगी, उसका अपना एक मज़ा है या नहीं है? तो अरे फरमाया करते हैं मैं इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे भूख लग रही है और खाना आने वाला है, मज़ा आता है कि नहीं आता इंतज़ार में? ये भी अल्लाह की नेमत है, ये एहसान कौन कर रहा है? देखो एक लिबरल डॉक्टर तो अल्लाह को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है भाई, उसका वो शुगर मीट लगा हुआ है अपना, यार मुझे भूख लग गई है, ऐसा ना हो मैं शुगर और हाई हो जाए। और अल्लाह वाले क्या कर रहे हैं भाई, इस खुदा ने हम पे ये तलब पैदा की, खुदा अभी से हमें लज्जत दे रहा है कि अभी खाने के इंतजार की लज्जत। कहते हैं फिर जब खाना सामने आता है तो फिर जो उसकी खुशबू आती है उसकी एक अलग लज्जत है, फिर जब उसको चबाते हैं, खूब चबा के खाने को खाया करते थे, बाकी निगल लिया तो लज्जत वो टेस्ट तो खत्म, तो खूब चबाते थे और चबाते हुए उसकी लज्जत को महसूस करते थे कि ये मेरा रब मुझे कितनी बड़ी नेमत दी है। और फिर उसको खाने के बाद जो एक सुकून मिलता है कि भाई भूख ख़त्म हो गई, उस भूख को ख़त्म होने के बाद एक अलग लज्जत के सुकून मिल गया, फिर उसके बाद मज़े की नींद आती है इंसान को, वो एक अलग लज्जत, भूखे पेट मज़े की नींद नहीं आती इंसान को। तो क्या एक खाने में सिर्फ फिर उसके बाद जो ताकत मिलती है बॉडी को, जब आप खाना खा के दोपहर को खास तौर पर सोते हैं उठते हैं, कैसे बॉडी में एनर्जी होती है कि नहीं होती भूखे? रमजान में मुझे याद है ना कराची गर्मियों के रोजे तो बड़े सख्त होते हैं, तो रमजान में हमें याद है कि जब हम अभी हम जब कैलूला करके उठते हैं तो ऐसे पावर होती है ना बॉडी में, थोड़ा सा बस मुंह धो सुस्ती दूर हो जाए तो बड़ी ताकत। रमजान में जब आप 3-4 बजे उठो ना, ऐसा लगता है कब्र से मुर्दे को उखाड़ रहे हैं। घर वाले जब आपको उठा रहे होते हैं ऐसा लगता है कब्र से, इतनी भूख से हालत खराब हुई उठा ही नहीं जाता। तो 1 घंटे तक आदमी नॉर्मल नहीं होता, तो ताकत आने के बजाय वो भूख की वजह से और वो हजम हो जाता है ना सब कुछ, तो और ज्यादा। फिर असर के बाद हालत देखा करो गर्मियों के रोजों, सर्दियों में तो चलता है, गर्मियों के रोजे में हालत देखा करो कैसे मुरझे आए हुए होते हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द, और कैसे जनाब ऐसे बैठे। फिर एकदम जब इफ्तारी के 2 लुक में 2 पकौड़े पेट में जाते हैं, एकदम एनर्जी आती है, और फिर मगरिब में देखो कैसे फुदकते हुए आ रहे होते हैं ऐसे स्पीड से। घर फरमाया करते थे फिर इस खाने से जो जिस्म में ताकत मिली है उसको सोचता हूँ कि मेरे रब ने मुझे ये ताकत दी। और मुसलमान एक और चीज भी सोचता है कि ये सब कुछ सोचने की भी तौफीक दी उस अल्लाह ने मुझे, अल्लाह ने हमें ये सब कुछ सोचने की भी तौफीक दी। काफिर ये सारी नेमतों से फायदा उठाएगा, ना जबान से खुदा का शुक्र अदा करेगा, ना खुदा के बारे में सोचेगा। जो मुल्हिद काफिर है वो तो है ही नहीं, और जो मुशरिक हैं वो बुत पे डाल देते हैं, वो किसको जो जिनको खुदा का शरीक बनाया हुआ ना उस पे, कि देखा हमने भगवान की वो उस पे गए थे ना हम वो बुत के हमने आशीर्वाद किया था ना, तो उसकी वजह से आज हमारी रोटी मिली है हमें। हम जो फला बाबे के मजार पे हमने जो बकरा चढ़ाया था ना उसके नतीजे में हमारी तनख्वाह बढ़ गई और आज हमें ये कबाब पराठे खाने को मिल रहे हैं। तो ना मुशरिक खुदा का शुक्र अदा करता है, ना मुल्हिद खुदा का शुक्र अदा करता है। अल्लाह का शुक्र सिर्फ तौहीद पर अदा करता है जो एक खुदा को मानता है और जिसने खुदा को याद रखा हुआ है। तो हमें अपनी जिंदगी में मेरे भाई खुदा को लाना पड़ेगा, और इल्म हासिल करके आप खुदा के करीब हों, खुदा से दूर होने की कोशिश ना करें आप। तभी हमारे नबी ने हमें ये सिखाया, कोई भी अमर अजीब होना तो हमें सुभानअल्लाह कहना चाहिए ताकि हम उसको किसकी तरफ लेकर जाएं। हमारे लिबरल लोगों को ना सुभानअल्लाह कहते हुए शर्म आ रही होती है, ये हालत हो गई यूनिवर्सिटियों में, क्या लोग मौलवी ना समझना शुरू कर दें। अल्लाह की तारीफ करते हुए शर्म आ रही होती है, खाना खाने के बाद दुआ मांगते हुए शर्म आ रही है। पहले तो सिर्फ टोपी पहनते हुए शर्म आती थी ना कि लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटलिस्ट किस्म का आदमी है, वो मौलवी टाइप का लग रहा है। अब टोपियां तो सर से गई, लेकिन अब क्या है कि जो तारीफी कलिमात खुदा के लिए कहने चाहिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म। शर्म आ रही है खाने के बाद दुआ पढ़ते हुए, लोग कहेंगे ये तो मौलाना टाइप का आदमी है। मैं अक्सर एक वाक्य सुनाता हूँ ना, हमारे महल्ले में एक साहब थे, उनके कोई लड़की वाले आए रिश्ते के लिए, तो वो मौजिन थे नहीं, कभी कभार जाके शौक में अजान दे दिया करते थे। तो वो मस्जिद में आए, उन्होंने अजान दे दी, मौजिन को कहा यार मैं अजान देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा चले यार तू दे दे आज अजान दी है। तो लड़के के अब्बा ने ना लड़की वालों को खुशी से बताया ये हमारा बेटा अजान दे रहा है। उनका ख्याल था कि ये कहेंगे वाह यार ये तो बड़ा नेक आदमी है, माशाल्लाह अजान भी देता है, वाह भाई। तो लड़की वालों ने, ये बात है मेरा ख्याल है 25 साल पुरानी बात होगी, है उस जमाने में ये हालात थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो मौलाना टाइप का आदमी है, भाई ये तो अजान दे रहा है यार, इस बेस पे रिश्ता तोड़ा है, इस बेस पे क्या किया है रिश्ता तोड़ा है। तो अजान कहते हुए शर्म आ रही है, और अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए शर्म आ रही है, टोपी तो चलो टोपी तो फर्ज वाजिब नहीं है, हम भी कहते हैं कि शर्म आ रही है तो जेब में रख लो भाई, थोड़ा बेशरम, सॉरी यानी कहने वाले तो बेशरम बन जाओ, बेशरम नहीं यानी जिस चीज़ से शर्म आ रही है तो वो जेब में रख लो, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ें मुस्तहबात में दाखिल हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, उनमें मेरे भाई हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म उसको आनी चाहिए जो खुदा की नेमतों को खा रहा है और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, ना खाने की दुआ याद है कमबख्त को, मुस्लिम मुल्क में पैदा हुआ, सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी, तुझे एक एक चीज़ का पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि खाने के बाद खुदा का शुक्र अदा करने का अल्लाह ने क्या तरीका बताया है। दुआएं याद नहीं होती लोगों को, चलो अरबी मुश्किल है, उर्दू में याद कर लो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें पिलाया और हमें उसने मुस्लिम बनाया, अरबी में नहीं आती उर्दू में याद कर लो। तो अल्लाह चाहते हैं भाई ये इल्म आपको खुदा से दूर ना करे बल्कि खुदा से करीब करे, और ये इल्म इंसान को खुदा से दूर कर रहा है, उसमें तकब्बुर पैदा कर रहा है।